ओम शांति। कला संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कला के संदर्भ में भी आप समझेंगे और संस्कृति के बारे में भी सही ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोई भी देश का नागरिक जब तक अपने देश की संस्कृति से शिक्षित नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है, क्योंकि हमारी सभ्यता का विकास जो होता है वो जैसी संस्कृति वैसी सभ्यता का विकास होता है। संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचार कर्म से है और सभ्यता का संबंध भौतिक साधनों से है। अब जब तक हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है उसकी स्पष्टता हमारी बुद्धि में नहीं है, तब तक भौतिक जो धन साधन है उसका उपयोग किस विधि से हमें करना चाहिए वो हमें स्पष्ट नहीं होता है। और मैं समझती हूँ कि आज सुबह से लेकर जो सत्र आपके चले हैं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि भारत की संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति, हमारी भोगवादी या भौतिकवादी संस्कृति नहीं है। पश्चिम के देशों की जो संस्कृति है वो भौतिकवादी भोगवादी संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति के नींव में शुरू से ही अध्यात्म के बीज है और इसलिए आप देखिए हमारी हिंदू समाज रचना इस प्रकार की है कि उसमें समय प्रति समय ऐसे वार त्योहार व्रत कथा प्रसंग आते हैं जिसके द्वारा हम अपने रूटीन सांसारिक जीवन में फिर से अध्यात्म के प्रति मूल्यों के प्रति जागृति प्राप्त करते रहते हैं, है ना, क्योंकि हरेक त्योहार आध्यात्मिक रहस्य को लेकर के शुरू हुए हैं। इसलिए वो त्योहार हमारे अंदर फिर से वो जागृति लाते हैं और इस प्रकार अपने अंदर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की जागृति लाकर के हम आनंद प्राप्त करते। पश्चिम के देशों का पता है आपको कि वे जब अपने रोज के यांत्रिक जीवन से थक जाते हैं तो वे अपने जीवन में नवीनता लाने के लिए खुशी और शांति का अनुभव करने के लिए वे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या तो अधिक जातीय स्वतंत्रता ले लेते हैं अर्थात कि दैहिक काम वासना का आधार लेते। हमारी संस्कृति की उच्चता ये है कि हमें जब जब कुछ नवीनता चाहिए कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए तो हमारे समाज के अंदर ये त्योहारों का आयोजन किया गया है जो हमें सांसारिक भाव से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक भाव में ले जाते। वहां भोगवाद है, हमारी संस्कृति में त्याग का महत्व है, इसलिए त्याग, तपस्या, शील, पवित्रता, सत्यता, दान, क्षमा, इन सारे गुणों का इस देश में महत्व है। और इसलिए आप देखेंगे गीता शास्त्र भी हमें सिखाता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, तो उसका त्याग करके उसका आनंद, खुद भोग करके आनंद नहीं, वो हमें केवल खुद भोगना, खुद के लिए सोचना, वो स्व केंद्रीय विचारधारा हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति बहु जन हिताय, बहु जन सुखाय, इसलिए हम सदा दूसरों के लिए भी सोचते। आज भी आप घरों में, गांव में देखेंगे कि गाय के लिए भी, कुत्ते के लिए भी रोटी, कुछ ना कुछ उसको भी डालेंगे, ये नहीं केवल खुद खाएंगे, पंखियों के लिए भी दाना डालेंगे कि भाई वो भी कुछ ना कुछ दाना चुगे, उनका भी हिस्सा है। कोई ज्यादा गांव में आप देखेंगे कि सब्जी होती है, अनाज उगता है, फल होते हैं, घर में छाछ बनाते हैं, पूरे मोहल्ले में देंगे। अभी भी गांव में ये दर्शन हमें होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग भोगने से आनंद नहीं मिलता है, व्यक्ति जब भोग भोगते हैं तो खुद ही भोगे जाते हैं। इसलिए यहाँ त्याग का महत्व है, दान का महत्व है, तप का महत्व है, सेवा भाव का महत्व है। पश्चिम की संस्कृति में ये चीजें नहीं, इसलिए वहां चैरिटी के संस्कार नहीं। हमारे यहां मध्यम वर्ग की व्यक्ति भी कुछ ना कुछ दान पुण्य करने की भावना रखती, वहां ऐसे चैरिटी के संस्कार ही नहीं। हर कोई स्व केंद्रीय, खुद का सोचते हैं, खुद खा पी के मौज करते, हर मास जो कमाते हैं या हर हफ्ते जो कमाते हैं खुद ही वीकेंड में उड़ा देते, है ना। भारतवासी के अंदर संस्कार है बचत करना और अन्य के लिए भी उसका उपयोग करना। तो ऐसी संस्कृति जिस देश की है उस देश के हम नागरिक हैं। तो आध्यात्मिकता संस्कृति का उत्थान कैसे कर सकती, क्योंकि जैसे जैसे भले हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं हुई है, और संस्कृति तो इस पृथ्वी मंच पर थोड़े समय के लिए हो रही और फिर विलुप्त हो गई। आपको सुनाया होगा ना कि ग्रीक की संस्कृति, इजिप्त, मिस्र की संस्कृति, रोमन संस्कृति, ये सब कुछ समय के लिए इस धरती पर आई, अपना प्रभाव दिखाया और आज वो नामशेष हो गई। कवि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे, बरसों तक इस देश की संस्कृति पर अन्य जातियों के आक्रमण होते रहे, है ना, कुश, हूण, मुगल, अफगानी, है ना, अंग्रेज, मुस्लिम, अन्य धर्म जातियों के आक्रमण इस देश पर हुए और उन्होंने राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली, पर वे इस देश पर सांस्कृतिक विजय नहीं प्राप्त करते। वो हमारी संस्कृति में मिल गए और हमारी संस्कृति और विशाल और समृद्ध होती गई। अब इस देश की संस्कृति पर पश्चिम की हवा का प्रभाव है ना, और इसलिए जब से टीवी कल्चर आया है सबकी जीवन पद्धति आचार विचार पर इसका बहुत प्रभाव है। कहां इस देश में चरित्र का महत्व, शील का महत्व, आज वहां देह श्रृंगार, वस्त्रों की फैशन, इन चीजों पर हमारे लोग भी प्रभावित होते जा रहे हैं। तब इस विश्वविद्यालय ने सोचा कि हम अपनी सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर फिर से हमारी संस्कृति का उत्थान करें और शुद्धिकरण करें। तो मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूंगी कि संस्कृति किसको कहते। संस्कृति माना पीढ़ी दर पीढ़ी जिन संस्कार जन्य गुणों को मान्यता मिलती जाती है वो फिर धीरे धीरे संस्कृति कही जाती है। समझे, कुछ संस्कार जन्य गुण है, मूल्य है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग स्वीकार करते जाते हैं, वो संस्कृति का स्वरूप धारण करते। अब संस्कार कैसे बनते हैं, आज मॉर्निंग के लेसन में इस बात को आपने समझा, संस्कार कैसे बनते। आज सुबह का सत्र अटेंड किया है सबने, हाँ, मॉर्निंग 6:30 का सेशन अटेंड किया, हाथ ऊपर करें। बहनों ने नहीं किया। संस्कार कैसे बनते कौन बताएगा। आत्मा की तीन शक्तियां बताई गई आपको, कौन सी, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। बार बार कर्म करने से वो कर्म संस्कार बन जाता है, आदत बन जाता है, हमारे व्यक्तित्व का एक पार्ट बन जाता है। तो बारंबार कर्म करने से संस्कार बनते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन संस्कारों को मान्यता मिलने पर वो संस्कृति कही जाती है। अब कर्म का आधार क्या है, मन की स्थिति है। आज आपने समझा है कि मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं और फिर हम कर्म करते हैं। समझो आप सभी यहाँ आए हैं, प्रैक्टिकल कर्म हुआ आपका आने का, आप यहाँ पहुंचे। इस कर्म का आधार क्या है, पहले आपने मन में सोचा कि चलो हम जाते हैं, है ना, बहनों ने आपको निमंत्रण दिए, आपने निर्णय किया। पहले तो आपको मन में अनेक विचार चले, जाए न जाए, ये काम है वो काम है ना। फिर आपने निर्णय किया कि नहीं चलो जाते हैं, देखे तो सही ये विद्यालय क्या सिखाता है ना। और बुद्धि से निर्णय करने के बाद प्रैक्टिकल आप यहाँ आए, वो कर्म हो। तो कर्म का आधार मनोस्थिति। जब मन की स्थिति शुद्ध और श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ होते। जब विचार गलत आते हैं, नेगेटिव चलते हैं, मन में द्वेष क्रोध होता है, अहम होता है, तो कर्म भी हमारा गलत ही चलता है। इसलिए मन की स्थिति कर्म का आधार है, कर्म से संस्कार बनते, संस्कार से संस्कृति पनपती है। अब मनोस्थिति का आधार क्या है? मन में वैसे ही विचार चलेंगे जैसी मेमोरी रिकॉर्ड हुई है। मान लो आपके अंदर किसी ने कोई बात फीड कर दी। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आप कोई नई ऑफिस में नौकरी करने जाते और वहां आप ऑफिस में जाकर काम करना शुरू करते हैं। उस ऑफिस का एक कर्मचारी आपको आकर कहता है कि फलाना व्यक्ति जो है इससे आप सावधान रहना, वो है ना बहुत बाहर से मीठा है पर अंदर से वो धोखेबाज है। आपको लगेगा कि वो बहुत कॉपरेट करता है लेकिन वो बहुत धोखेबाज है। आप नए नए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे करके हमें कोई ना कोई कुछ बात बताते। अब कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि आज आप बहुत बिजी लग रहे हैं, काफी फाइल्स आपके टेबल पर पड़ी है, आपको ओवरवर्क लग रहा है, मैं कुछ आपको मदद करूं। अब आपको कौन सा विचार आएगा? हाँ कि भाई सावधान है ना, उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि वो आएगा और दिखाएगा कॉपरेट कर रहा हूं, लेकिन आप उससे सावधान रहे। जो मेमोरी फीड हुई, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी के रूप में आप में है, उसी के आधार पर आपके विचार है ना, उसी के आधार पर आपकी मेंटल स्टेट बनती है। आप उस व्यक्ति के प्रति अब एक शंका की मन की स्थिति बनेगी, है ना। इसलिए जैसी स्मृति वैसी मनोस्थिति, मेंटल स्टेट, जैसी मेंटल स्टेट वैसे एक्शन हम करते। अगर स्मृति गलत है तो मन की स्थिति भी गलत ही रहे। मान लो हमारी स्मृति में ये है कि खाओ पियो और मौज करो, तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा चलेगा? भी खाओ पियो मौज करो, है ना, क्योंकि हमारी मेमोरी में वही रिकॉर्ड हुआ है। अब जैसी समझ होगी वैसी स्मृति रहे। अगर बुद्धि में नॉलेज रॉन्ग है तो मेमोरी भी रॉन्ग है। सही ज्ञान से सही समझ आती है और आध्यात्मिकता से सही ज्ञान प्राप्त होता है। संसार में दो बात है, एक है भौतिकता और एक है अध्यात्म। पहले मैं वो व्याख्या आपको स्पष्ट करती हूं कि भौतिकता माना क्या। हम कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक समाज बन गए। मटीरियल माना धन साधन संपत्ति, है ना, ये सारा मटीरियलिज्म कहा जाता है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन साधनों पर ज्यादा आधारित हो रहा है, जीवन की साधना कम हो रही है ना। मैटर से जो चीजें बनती है, मैटर माना भौतिकता माना प्रकृति के पांच तत्व, भौतिकता माना प्रकृति के पांच तत्व, पांच तत्व कौन से हैं? पांच तत्व कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति ने, नेचर, कुदरत जिसको कहते, प्रकृति के ये मूल पांच तत्व है। इन पांच तत्वों से ये जो भी पदार्थ है, चीजें, वस्तुएं, साधन, ये तमाम पदार्थ पांच तत्व से बनते। एक छोटी पीन से लेकर बड़े से बड़ी मशीन किसमें से बनती है? किसमें से बनती? पांच तत्व से बनती, मैटर से बनती है, इसलिए उसे मटेरियल कहते। अच्छा, ये शरीर भी किससे बना है? प्रकृति के पांच तत्व। और अल्टीमेट ये सारा संसार, सृष्टि, जो इन आंखों से आप देखते हैं, वो किससे बना है? पांच तत्व, समझे? उसको कहते हैं भौतिकता, मटीरियलिज्म, भौतिकवाद उसको कहते हैं, कि जीवन में धन, साधन, पदार्थों का महत्व, वैभव का महत्व और शरीर भाव में रहना, ये है मटीरियलिज्म। अब दूसरी बात, आध्यात्मिकता माना क्या? कल रमेश भाई जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि धर्म अलग चीज है। आज जो धर्म प्रसिद्ध है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फिर उनके संप्रदाय, मठपन, ये सब देह धर्म है। व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, माना वो मुसलमान है। हिंदू परिवार में पैदा हुआ, माना वो हिंदू है। माना देह से धर्म हुआ ना। आध्यात्मिकता मीन्स, आप संधि विच्छेद करो, अधि प्लस आत्मिकता, माना आध्यात्मिक। आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान, उसको आध्यात्मिकता कहते। शरीर के बारे में, संसार के बारे में, चीज वस्तु के बारे में अधिक ज्ञान, उसको भौतिक ज्ञान कहते। चैतन्य शक्ति आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान, उसको आध्यात्मिकता। माना आत्मा के संबंध में अधिक ज्ञान, वो है आध्यात्मिकता। अब उसको दूसरे शब्द में हम समझे, इंग्लिश के शब्द से स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान माना स्पिरिचुअल नॉलेज इंग्लिश में। और स्पिरिचुअल शब्द अबाउट स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा। आत्मा को अन्य भाषा में कहते हैं स्पिरिट, सोल, साइकी, लिविंग एंटिटी, उसको कहते हैं सरल भाषा में आत्मा। हम कहते हैं ना भाई, ये साइकियाट्रिस्ट है। अब साइकियाट्रिस्ट माना क्या? जिसको साइकी के बारे में, चैतन्यता के बारे में अधिक ज्ञान। इसलिए साइकियाट्रिस्ट हमारे मन के भाव, भावना, दृष्टिकोण, इन सबको वो ज्यादा परखते। और मेडिकल साइंस कहता है ना कि 90% जो बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक कारण। इसलिए मेडिकल क्षेत्र में भी अब केवल बॉडी को ट्रीट नहीं करते हैं, उसके मेंटल स्टेट को भी ट्रीट करते हैं। क्योंकि बीमारियों का कारण केवल शरीर नहीं है, मन भी है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज माना अबाउट स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स लिविंग एंटिटी, चैतन्य शक्ति, है? ये चीजें जड़ है, हम उसको नॉन लिविंग कहते, कि ये नॉन लिविंग है। जड़ मीन्स जो सोच नहीं सकते, स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते, अनुभव नहीं कर। चैतन्यता के लक्षण क्या है? सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव होता है, दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, ये चैतन्यता के लक्षण। इसलिए चैतन्य शक्ति आत्मा के निकल जाने के बाद बॉडी को हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी, है? फिर उसको काटे, जलाएं, दफनाएं, कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अनुभव करने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो निकल गई। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है कि जैसे शरीर के विकास, शरीर के पोषण और शरीर के रक्षण के बारे में ज्ञान है, ऐसे आत्मा के विकास, आत्मा के एम्पावरमेंट और आत्मिक विकास के बारे में अधिक ज्ञान होना, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में क्या क्या आता है? जीवन और जगत के सनातन सत्यों का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, कि वे हमारा जीवन और ये संसार किस नियमों के आधार पर चलता है, इन यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान। देखो, विज्ञान हमें 5 तत्व के सिद्धांतों का ज्ञान देता है, ये प्रकृति किन नियमों पर चलती है उसकी खोज करते हैं, प्रकृति के डेप्थ में जाते हैं, वो विज्ञान। आध्यात्मिकता क्या है? चैतन्य शक्ति और आत्माओं का ये संसार किन सिद्धांतों पर चलता है, उन सनातन सत्यों के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। आंतरिक आत्म शक्तियां और आत्मिक मूल्यों को जागृत करने वाला ज्ञान, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जैसे फिजिकल ज्ञान आपके पास है, शारीरिक विज्ञान शास्त्र को आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाथ, है? आपके मन में ये प्रश्न कभी होता है कि इसको हाथ क्यों कहते हैं, इसको पांव क्यों नहीं कहते, इसको माथा क्यों नहीं कहते? कभी ऐसा प्रश्न नहीं होता है, क्यों? क्योंकि शरीर विज्ञान की ये मूल बातें, शरीर के ये मूल ऑर्गन्स है, इसलिए हमें क्वेश्चन नहीं है। हर एक को नॉलेज है, इसको हाथ कहते, इसको माथा कहते, इसको पांव कहते, है? गणित शास्त्र के मूल चीज को आप जानते हैं, 2+2 कितना होता है? हाँ, बेबी बताएगी, 4। इसमें हमें क्वेश्चन नहीं है भी 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, नहीं, वो बेसिक चीज है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही गणित शास्त्र, अध्यात्म के जो मूल सत्य है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये संसार चक्र क्या है, कर्म की गति क्या है, इन मूल सत्यों को हम नहीं जानते हैं। इसलिए जब मूल सत्य ज्ञान नहीं है, तो हमारी जो विविध मान्यताएं हैं वो राइट कैसे हो? रियल नॉलेज इज लाइट एंड माइट कहा जाता है। दुनिया भर का ज्ञान है हमारे पास, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, पर सही ज्ञान जो अपने आप में एक शक्ति है, एक प्रकाश है, वो हमारे पास नहीं। इसलिए दुनिया भर की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद भी प्रत्येक मानव के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां हमें जाना है, होती है ना ये जिज्ञासा। अगर मैं आप सबसे पूछूं, मान लो मैं बहन जी से पूछूं, बहन जी आप कहां से आए हैं? अहमदाबाद, है ना। अगर बहन जी ये कहे कि भाई मैं आई तो हूं लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कहां से आई हूं, तो कैसा लगेगा? हंसी आएगी ना कि ये क्या है, आए हैं और पता नहीं है कहां से आए हैं। तो हम इस दुनिया में आए हैं, जीवन जी रहे हैं, कहते भी है अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और हमें पता ही नहीं है कि हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना। ये है मूल सत्य, ये है सारे सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ इसको कहते हैं। अगर हमारे पास ये मूल सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो पहले आपने पूरा साइकिल देखा कि अगर हमारे पास मूल सत्य ज्ञान नहीं है तो सही ज्ञान नहीं है, तो सही समझ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं। देखो आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को कई समय से जानते होंगे, है ना? जो पहली बार यहाँ आए हैं वो हाथ ऊपर करें, पहली बार आए, है ना? नाम तो आपने सुना होगा ना। अब जब तक आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, खुद अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, अपने कान से, अपने विवेक से ज्ञान को नहीं समझते हैं, तब तक आपको सही समझ नहीं आएगी ना ये विद्यालय क्या। कई लोग हमें कहते हैं कि हम तो रोज बोर्ड पढ़ते थे पर हम समझते थे कि ये तो बहनों की संस्था है, इसलिए हम आते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी लिखा है ना, इसलिए वो सोचते, हम तो ये सोचते थे कि ये तो बहनों की संस्था है। जब आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर उनको रियल अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये तो आत्माओं के लिए, भाई या बहन की बात नहीं है, सभी आत्माओं के लिए। एक भाई ने हमें ये कहा कि मैं तो समझता था कि ये प्रजापति कोई कुम्हार की संस्था है। भाई प्रजापिता स्पष्ट लिखा है, पर खुद आकर जब तक समझे नहीं कि प्रजापिता, प्रजा का पिता, मनुष्य आत्माओं का पिता, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति का आदि पिता कौन? ब्रह्मा। आज रात को आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा कौन है, जिसके द्वारा ये विश्वविद्यालय स्थापन हुआ है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, आज रात को दादी आपको सुनाएगी, है ना। पर जो आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो तो समझते कि भाई मैं तो समझता था कि कोई कुम्हारों की संस्था है। अच्छा, कई समझते जब तक खुद नहीं आते हैं उनको क्लैरिटी नहीं होती, जो सुनी सुनाई बातें हैं वो सोचते हैं भी वहां जाएंगे तो सफेद कपड़े पहना देंगे, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, घर बार छोड़ देंगे। अब घर बार छोड़ने की बात नहीं है यहाँ, कौन सी बात है? बुराई छोड़ने की बात, विकारों को छोड़ने की बात, अज्ञानता छोड़ने की बात। अज्ञानता से उत्पन्न विकार व्यसन फैशन छोड़ने की बात है, पर जब तक आएंगे नहीं लोग समझते नहीं है क्या। इसलिए जब तक जीवन में सही ज्ञान नहीं है, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, और जब तक सही समझ नहीं है हमारी स्मृति सही नहीं बनेगी, तो मनोस्थिति भी हमारी सही नहीं रहेगी, कर्म भी ठीक नहीं चलेंगे, संस्कार भी ठीक नहीं बनेंगे, तो नेचुरली संस्कृति हमारी क्या रहेगी, है जो आज हम देखते। आज हर माँ बाप, हर बुजुर्ग, समाज के हर बड़े चिंतित है अपने युवा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बहनों के चरित्र के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं समाज किस तरफ जा रहा है। तो विद्यालय ने ये समझा, ये समय है संस्कृति के उत्थान का और उसके बारे में लोगों को सही ज्ञान देने का। इसलिए यहाँ आपको संस्कृति के बारे में भी सही ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान से हमारी बिलीफ सिस्टम सही बनती है। बिलीफ माना मान्यताएं, हर चीज के बारे में हरेक की अपनी अपनी मान्यता है। मैं आपसे पूछूं, जीवन के बारे में आपकी क्या मान्यता है, क्या उत्तर देंगे? बताइए, जीवन के बारे में आप क्या मानते? आपने कई मैगजीन में या कोई छोटा पोस्टर भी पढ़ा होगा, जीवन माना ये, जीवन माना ये, जीवन माना ये, कंपैरिजन करते हैं। हर एक ने अपने अनुभव से अपनी मान्यता अनुसार कहा है। जिसको अपने जीवन में ऐसे अनुभव होंगे वो कहेंगे भी लाइफ मीन्स ट्रेजेडी, है ना? जो अपने जीवन को सहज पार करते हैं वो कहते हैं लाइफ इज अ गेम। कई जीवन में अचानक बातें आ जाती हैं वो कहते हैं लाइफ इज अ मिस्ट्री, राज है, एक रहस्य है। तो जीवन के बारे में अनेक मान्यताएं, जो थका होगा लाइफ से वो कहेंगे जीवन माना बोझ, जंजाल है, है? तो हमारी विविध मान्यताएं, कर्म के बारे में आप क्या मानते हैं, सुख के बारे में आप क्या मानते हैं, दुख के बारे में आप क्या मानते हैं, पुरुषार्थ के बारे में, प्रारब्ध के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में आपकी मान्यता क्या है? कोई कहेगा स्वर्ग ऊपर, कोई कहेगा नरक पाताल में, कोई कहेगा जो धनवान है वो स्वर्ग में, कोई कहेगा हम अपने आप में खुश है माना हम स्वर्ग में। कितनी कितनी व्याख्या है, कितनी मान्यताएं। अगर मान्यता रॉन्ग है तो जीवन भी रॉन्ग ही चलेगा। जैसे चार्वाक ने क्या कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मीन्स उधार भी लो पर घी पियो, मीन्स खाओ पियो मौज करो, चाहे आप उधार भी पैसे लो, एक लाइफस्टाइल वो है। एक लाइफस्टाइल वो भी है कि लिव फॉर अदर, जियो और जीने दो, एक जीवन पद्धति है। तो जैसी आपकी बिलीफ होगी ऐसी जीवन आपकी चलेगी। अगर वो मान्यता गलत है तो जीवन भी गलत ही चलेगा। इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास सच्चा ज्ञान हो, तब हमारी मान्यताएं करेक्ट हो, तब हमारा जीवन करेक्ट। हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा सही बनने से हमारी स्मृति यथार्थ बनती है। आज सुबह 6 बजे तक आपकी अपने बारे में क्या मान्यता थी? आप अपने आप को क्या समझते थे? कोई समझते थे कि हम मनुष्य, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना? खुद के बारे में क्या मान्यता है? मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं एमए बीएड हूं, मैं प्रोफेसर हूं, क्या मान्यता थी? यही थी ना, मैं इसका बाप हूं, मैं फलाने का पति हूं, है? अब आपकी मान्यता क्या है? विवेक से बता रहे, सुना इसलिए नहीं, पर आपको लॉजिकली समझ में आया हो तो आप बताइए कि अब आपकी अपने बारे में क्या समझ है। हाँ बहने बताएं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। अब आपको क्लियर है, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, है ना? शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, पर शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा। एक ही बात, आप सोचिए, आप रोज लेसन करते जाएंगे, मॉर्निंग के लेसन, आपको क्लियर होगा हमारी एक एक बिलीफ रॉन्ग है तो लाइफ साइकिल रॉन्ग चलता है। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा गलत है तो जीवन गलत ही चलेगा, है? तो सही ज्ञान से सही स्मृति बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि, सद्बुद्धि माना सत्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है, जिसको हम सद्विवेक कहते हैं। अब तक हम सभी क्यों ये प्रार्थना करते रहे हैं भगवान को कि सबको सदमति दे भगवान, है? कितना भी समझाने पर सही बात भी कोई नहीं समझता है तो हम क्या शुभ भावना रखते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, है ना? इसलिए आज हम कहते हैं कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, है? बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट संसार बन गया है, ऐसे कहते हैं। तो सबसे पहले कर्म भ्रष्ट कब होता है? जब पहले बुद्धि भ्रष्ट। तो सही ज्ञान, सही बुद्धि, सद्विवेक हमें देता है, और सद्विवेक होगा तो विश्लेषण करने की, मीन्स एनालाइज करने की शक्ति आप में आएगी। आज ये शब्द समाज के लिए कहा जाता है कि आज सभी को एनालिसिस पैरालिसिस लागू हुआ है। जब व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है? उसका अंग काम नहीं करता है, डेड हो जाता है, सेंसेशन नहीं रहे। तो लोग कहते हैं कि कहां पैरालिसिस हुआ है कि व्यक्ति का विवेक ही काम नहीं कर रहा है, और ये सही बात है। हर कोई देख रहा है, समझ रहा है, फिर भी वही कर रहा है। हरेक समझते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, हरेक समझते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हरेक चाहते भी हैं कि हम गुस्सा ना करें, दुख ना दें, मिलके चले चाहते हैं हरेक, फिर भी प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या? जो नहीं करना चाहिए वो फिर करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, दूसरों पर दादागिरी करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और खुद के ऊपर कंट्रोल है नहीं। घर में नया टीवी लाते हैं, रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे देते हो क्या कि भाई तुम जो दिखाना चाहे वो दिखाओ? हाँ नहीं, बल्कि हर कोई घर में क्या चाहता है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो ताकि मैं जो देखना चाहूं वो देख सकूं। और जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? किसके हाथ में? दूसरों के हाथ में। अपने हाथ में है? कोई कुछ कह देता है दुखी हो जाते, किसी ने अपमान कर दिया मायूस हो जाते, किसी ने महिमा कर दी खुश हो गए, किसी ने कुछ गलत बता दिया मिसगाइड हो गए। संग दोष क्यों होता है? संग में बुराई आई, कहते ना उनके संग में बीड़ी पीना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं पीता था पर इनके साथ हम ऐसा पिक्चर देखने चले गए, मीन पैरालिसिस, विवेक काम नहीं कर रहा है। हर कोई समझते हैं 3 घंटे का समय निकाल कर पैसा खर्च कर गंदे दृश्य बैठकर देखते, कोई प्राप्ति नहीं, चरित्र बिगड़ता है। फिर भी ये है एनालिसिस पैरालिसिस कि हमारी विश्लेषण की शक्ति राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्राप्ति है किसमें नुकसान है, वो हम परख नहीं पा रहे। आधुनिकता के नाम पर भ्रष्टता को स्थान दे रहे हैं। निर्णय करने की शक्ति इस ज्ञान से प्राप्त होती है, डिसीजन पावर। कई कहेंगे बहन जी हम समझते भी है कि राइट ये है रॉन्ग ये है, लेकिन डिसीजन पावर नहीं है कि रॉन्ग है नहीं ही करना, राइट है वही ही करना, वो डिसीजन पावर नहीं। रियल नॉलेज ये शक्ति हमें देती है। इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा सच्ची संस्कृति हम ला नहीं सकते। आज हर बुजुर्ग समाज के बड़ों को चिंता है कि हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो रही है, हमारे घर के अच्छे संस्कार स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चे गंवा देते है ना। स्कूल कॉलेज बनाए इसलिए कि पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे बने, लेकिन और ही घर के अच्छे संस्कार स्कूल कॉलेज में जाकर खराब कर देते, क्योंकि वातावरण संग दिन भर की इंफॉर्मेशन जो मिलती है देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं वो सारी गलत है, और यहाँ वो विवेक शक्ति है नहीं कि कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए और कौन सी रिजेक्ट होनी चाहिए। इसलिए विद्यालय ये कहती है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही संस्कारों की शुद्धि होगी और संस्कृति का उत्थान होगा। आप सोचते होंगे कि हम तो कलाकार हैं, आए यहाँ प्रोग्राम में और ये तो ज्ञान ही सुना रहे हैं, पर इसका कारण ये है भैया कि जब तक ये जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आपकी बुद्धि में स्पष्ट ही नहीं होगा हमारी संस्कृति क्या है, और जब तक संस्कृति का सही ज्ञान नहीं होगा आपकी कला का अभिव्यक्ति, कला की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए वो आपको नहीं बने। तो मैं अब कला के विषय पर आती हूं कि यहां जो राजयोग सिखाया जाता है अभी का जो विषय है उसका आधा हिस्सा ये है कि योग द्वारा कला का दिव्यकरण। आप सब में विशेष कलाएं हैं और कला के द्वारा आप मनोरंजन करते हैं, लेकिन कला का डिविनाइजेशन अगर हो जाए तो और सात्विक आनंद हम समाज को दे सकेंगे, विवेकपूर्ण आनंद समाज को दे सकेंगे। मैं आपके सामने तीन चित्र पेश करती हूं। देखो, पहला चित्र, एक चित्र देवी का है और एक चित्र अभिनेत्री का है। दोनों में श्रृंगार है, दोनों बहनें हैं, दोनों ने अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार आभूषण पहने हैं। श्रृंगार कला, वस्त्र परिधान की कला, लेकिन एक देवी के सामने जब आप जाते हैं तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते? पवित्र भाव, पूज्य भाव। उस देवी के आगे हमें अपने पाप रियलाइज होते हैं। हम ये कबूल करते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, मीन्स मन में पवित्र उच्च भाव उत्पन्न होते हैं। और ये उतना ही वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज है, पर एक अभिनेत्री के सामने मन में कौन से विचार आते? दैहिक भाव, काम वासना के भाव। दोनों स्त्री है, दोनों वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज है, 16 श्रृंगार, लेकिन एक के सामने मन पवित्र बनता है, एक के सामने विषयी विचार आते हैं। क्या अंतर है दोनों? क्या अंतर? क्यों ऐसा होता है? हाँ, चरित्र। एक देवी के अंदर उनके नैनों में जो पवित्रता है, उनके चेहरे पर जो निर्दोषता है, इतना वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज है, लेकिन कभी आप कहते हैं कि ये देवी तो बहुत फैशनेबल है? कहते नहीं। और आज उतने ही वस्त्र अलंकार आभूषण पहनकर अगर हम निकले तो लोग कहेंगे ये तो बड़े फैशन में फट गए गुजराती में, बड़े फैशनेबल। क्यों? जीवन में केवल बाह्य श्रृंगार और बाह्य कला नहीं, लेकिन साथ साथ अंदर की ब्यूटी भी चाहिए, संस्कार, चरित्र, विचार, कर्म की सुंदरता चाहिए। ऐसा नहीं है देवी देवताएं ये कलावान नहीं थे, श्रृंगार नहीं करते थे, भौतिकता नहीं थी उनके पास। ये ताज, वस्त्र, अलंकार बताते हैं कि वो लोग संपन्न थे, लेकिन चरित्र की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता थी, इसलिए वो श्रृंगार भी दिव्यता के भाव लाते। आज हमने बाह्य श्रृंगार करना सीख लिया, गांव गांव में लोग मॉडर्न बन गए हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं गांव की माताएं भी, है ना? हर कोई वो सीख गया और कॉन्शियस है, एक दो को कहेंगे समय के अनुसार रहना चाहिए, तुम तो पिछड़ी हुई लग रही हो। लोग आधुनिक फिजिकली वस्त्र अलंकारों से बन रहे हैं, लेकिन चरित्र से गिर रहे हैं। इसलिए अगर चरित्र की शुद्धि के साथ कला की अभिव्यक्ति है तो वो कला दैहिक भाव जागृत नहीं करेगी, शुद्ध भाव उत्पन्न करेगी। दूसरा एग्जाम्पल मीरा का दिखाया है कि मीराबाई भी कृष्ण के प्यार में विभोर हो जाती और नृत्य करने लगती। कृष्ण के प्यार में उससे इतना आनंद आता था कि वो उसके अंग थिरकने लगते थे। आज भी डांस गीत संगीत चलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? आज हम नाच नाच कर आनंद प्राप्त करते हैं और वो आनंद में थी इसलिए नाचते, ये अंतर। हम क्यों ये गीत गरबे डांस के प्रोग्राम आयोजित करते हैं कि भाई मनोरंजन चाहिए, मीन्स मन खुशी में आनंद में नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं आनंद के लिए ये गीत गरबे डांस के प्रोग्राम आयोजित किए जाए। अंदर आनंद नहीं है, है? इसलिए डांस कर कर के आनंद लाना चाहते। मीरा थी, अंदर से आनंद था इसलिए अंग हिलते थे, थिरकते। हमने वो अंदर की अनुभूति, हमारी अंदर की जो प्राप्तियां हैं वो हमने गंवा दी है और बाहर से हम, क्योंकि हमारी अपना आनंद का गुण, हमारी खुशी अंदर नहीं है और वो जब स्टेज पर देखते हैं तो हम थोड़े समय के लिए आनंदित हो जाते। तो कहां मीरा का प्रभु प्यार में नाचना और कहां आज नाइट क्लब्स चलते हैं, या इवन आप नवरात्रि के प्रोग्राम में भी आप देखिए फैशन शो, लेट नाइट तक घूमना डांस करना, वो देवी कौन है वो भी आज के युवाओं को पता नहीं है। एक मिनट भी मन परमात्मा में लगाते नहीं, कितना अंतर। और पाश्चात्य संगीत और उनके जो पता नहीं किस प्रकार के डांस आए हैं भारत के, उसमें तो फिर भी कोई कला शास्त्रीय संगीत या हमारे कथक और भरतनाट्यम में तो फिर भी कला है। आजकल जो सीख रहे हैं कौन से डांस आप लोग कहते हैं उसको, डिस्को, हाँ, अब उसमें क्या है, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस दैहिक भाव। इसलिए रिजल्ट आप देखते हैं कि आज क्या रिजल्ट आते, ऐसे कार्यक्रमों के दौरान कितने रैप, बलात्कार और जातीय स्वतंत्रता के पाप बन जाते हैं। तो कला पहले भी थी आज भी, लेकिन व्यक्ति के चरित्र की शुद्धि के साथ जब कला थी तो वो कला उपासना का साधन। पहले शिव के मंदिरों में कला गीत संगीत और नृत्य को परमात्मा की उपासना के साधन माने जाते। वो परमात्मा से योग रहा नहीं इसलिए दैहिक भाव आने लगे। और तीसरा कि कहां हमारा शास्त्रीय गीत संगीत है ना, वो परमात्मा की याद में शुद्ध भाव से गीत गाना विभोर होके। और आजकल के गीत संगीत क्या दैहिक भाव के अलावा, कहा वो गीत देशभक्ति के, मैं तो देखती हूँ कैसे देशभक्ति का भाव जगाते थे और आज उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आजकल के ट्यून और वॉइस में जो बनाए हैं, लोग नाचते हैं देशभक्ति के गीतों पर वो भाव जागृत नहीं हो रहा है देश के लिए। इसलिए कला के साथ योग का प्रयोग आप करके देखिए, क्योंकि योग आपके मन के सूक्ष्म भाव और भावनाओं को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाते। भाव इफेक्ट करते हैं। आज मान लो गीत करुण भाव का है, करुण है, और मैं हंस हंस के गाऊं तो कैसा लगेगा? जैसा गीत वैसा भाव भी चाहिए। देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, गरबे गा रहे हैं, पर भाव कौन से? योग मन के सूक्ष्म भावों को और हमारी भावनाओं को शुद्ध करते, वो योग आप सीखेंगे। आज तो आपका एक ही लेसन हुआ। दूसरा, दैहिक भाव समाप्त होकर विशुद्ध आत्मिक भाव धारण होने से चेहरे पर न्यारे और प्यारेपन का एक अनोखा आकर्षण आता है। बॉडी कॉन्शियस होकर दैहिक विषयी भाव से कोई काम करना और अंतर के शुद्ध डिटैच परमात्मा प्यार के भाव से काम करना बहुत अंतर है। और मैंने ये पूछा भी था कि जब वो लोग धार्मिक फिल्में बनती है और उसमें जैसे राम सीता का रोल प्ले करते हैं तो उसको प्रैक्टिस कराते हैं, वो ऐसे सौम्य दिव्य डिटैच भाव वाला चेहरा कैसा बनाना चाहिए वो उनको सिखाना हो पड़ता है, तब वो देवी देवता जैसे लग सकते हैं, वो रोल प्ले कर सकते। वो तो सिर्फ रोल प्ले करते, सबको पता है कि राम का पार्ट बजाने वाला वो फलाना एक्टर है, सीता जो बनी थी ना वो फलानी थी, हर एक को पता है। इसलिए भल वो देखते हैं लेकिन अंदर से जानते तो है ना कि रियल राम सीता ये नहीं है, कोई गधा शेर का चमड़ा पहन के आ जावे तो वो शेर थोड़ी हो जाता है। अंदर की चीज तो वो वही एक्टर है ना जो दिन रात देखी भावों के काम कर। इसलिए जब रियल में आप योगी बनते हैं, परमात्मा से मन लगाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, योग हम किसको कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का हाईएस्ट फॉर्म वो मेडिटेशन। तो जब श्रेष्ठ चिंतन, शुद्ध चिंतन, परम चिंतन, आत्म चिंतन आप करते हैं तो आपके भाव, भावना, चेहरा, चलन, चरित्र सब कुछ विशुद्ध बनता है। तो उसकी जो एक लाइट एंड माइट है वो एक अलग है। मन की एकाग्रता से सफलता मिलती है ना। जब आप कोई रोल प्ले करते हैं ड्रामा में, फिल्म में, तो आपको वो बन जाना होता है और वही सक्सेस होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन पावर इस योग से डेवलप होता है। क्योंकि मेडिटेशन में हमारी प्रैक्टिस ये है कि मैं जो हूं वो ही मुझे सोचना, मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं शुद्ध और शांत हूं, जो मैं हूं वो मुझे चिंतन करना। तो अपनी वास्तविकता में रहने का अभ्यास होता है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर डेवलप। कला का प्रयोग पवित्रता के साथ कर सकते जिसके कारण कला दिव्य बन जाए। इसलिए हम कहते हैं कि कला डेवलप करने के कई संस्थान हैं। गीत कैसे गाना चाहिए, संगीत कैसे बजाना चाहिए, एक्टिंग कैसे करना चाहिए, वो सिखाने वाली कई संस्थाएं, लेकिन कला को डिविनाइज करने वाली ये संस्था, यहां कला का शुद्धिकरण, कला का दिव्यकरण किया जाता है। कला तब आपकी कला सही अर्थ में समाज सेवा तथा प्रभु उपासना का माध्यम बन सकती है। आपकी कला फिर केवल कला नहीं, केवल कमाने का साधन नहीं, केवल दैहिक और भौतिक आनंद देने वाली नहीं, लेकिन सात्विक आनंद देने वाली एक श्रेष्ठ माध्यम बन जाएगी। आप प्रयोग करके देखिए। ओम शांति।